सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के भविष्य को नया आकार देती नागरिकों की नमो ऐप पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे होने पर नमो ऐप ने जनमन सर्वे शुरू किया है, जो बहुत जल्दी लोकप्रिय हो गया है। एक ही दिन में देश के 5 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पर अपनी राय दी है। जनमन सर्वे की महत्ता पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। अशोक जी, सुर्खियों में आपका स्वागत है।
नमस्कार
अशोक जी। सबसे पहले श्रोताओं को ये बताएं कि जनमन सर्वे क्या है और इसे क्यों शुरू किया गया है।
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश की जनता के साथ संवाद करते आए हैं। मन की बात कार्यक्रम में हम देखते हैं कि वो संवाद करते हैं, तो जो काम उन्होंने किए, उनकी सरकार ने किए, उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, तो लोगों की एक राय लेने के लिए या प्रतिक्रिया लेने के लिए प्रधानमंत्री ने स्वयं आगे आकर स्वयं से ये घोषणा की है। और उन्होंने अपने एक्स में लिखकर ये कहा है कि वो चाहते हैं कि जो काम उनकी सरकार कर रही है उसमें, जैसे उस पर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, सरकारी पहल हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उन पर लोग अपनी राय व्यक्त करें। और वो इसलिए भी आवश्यक है कि जो सरकार काम कर रही है उसमें लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, लोग और क्या चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये एक अनूठा प्रयोग करने का फैसला किया है। अब ये प्रयोग तो नमो ऐप से ही होगा। पहले भी लोग नमो ऐप के द्वारा अपनी राय या अपने सुझाव प्रधानमंत्री तक भेजते हैं, लेकिन इस बार तो ये विशेष एक कार्यक्रम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो अपने आप में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की सक्रिय भागीदारी को लेने के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। अब इसमें होगा ये कि जितने भी प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दे हैं और सरकार की योजनाएं हैं, उन पर लोग अपना एक सर्वे के तौर पर अपनी प्रतिक्रिया सीधे तौर पर साझा करने के लिए एक मंच उनको दिया गया है। और ऐसे में होगा ये कि देश के हर कोने से प्रतिक्रियाएं इकट्ठी करके ये सर्वे सुनिश्चित करेगा कि लोगों की आवाज सुनी जा रही है और भविष्य की नीतियों को आकार देने में इसका क्या सहयोग रहेगा, ताकि सरकार अपनी नीतियों को आगे कैसे बढ़ाए।
जैसे इसमें अब कैसे होगा और इसमें लोग कैसे शामिल हो सकते हैं, जैसे आपने ऐप के जरिए तो बताया कि ऐप के जरिए हो सकते हैं, और मतलब उसके लिए क्या करना पड़ेगा लोगों को।
देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे आपने भी कहा कि ये सर्वे में भारत के लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा, सुशासन, संस्कृति और युवा और महिला विकास, ऐसे विषयों पर 26 घंटे जब से ये सर्वे शुरू हुआ है उसमें 5 लाख से ज्यादा लोग तो अभी राय दे भी चुके हैं। ये दिखाता है कि लोगों में इस सर्वे की लोकप्रियता कितनी है, और सबसे बड़ी बात लोगों में इसकी जागरूकता भी आ गई है। तो ये लोगों की आवाज को सीधे और सही तरीके से सुनने का एक जरिया बनाया गया है, तो जिससे उनकी राय देश के विकास में मदद कर सके। अब कैसे पहुंचे सर्वे तक, भारत के नागरिक जो हैं वो नमो ऐप के माध्यम से दो अलग अलग तरीके से सर्वे में भाग ले सकते हैं। जैसे पहले नमो ऐप का जो होम पेज है, होम पेज पर एक बैनर उपयोगकर्ताओं को सर्वे के लिए एक दिशा निर्देश देता है, निर्देशित कर रहा है। यानी पहले तो आप नमो ऐप में जाएंगे, उसका जो होम पेज का बैनर है उसमें आपको इसके लिए एक तरह से गाइडलाइन मिलेंगी, और दूसरा नमो ऐप के माध्यम से नागरिक सीधे ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण तक पहुंच सकते हैं और अपने विचार साझा कर सकते हैं। तो ये इस तरह से अब 11 साल का जो मोदी सरकार का कार्यकाल रहा है, तो इसकी जो सेवा मॉड्यूल है नमो ऐप पर दूसरे बैनर के रूप में स्थित है। यानी जो सर्विसेज हैं उसमें वो आपको दूसरे बैनर में मिलेंगी। ये सर्वेक्षण को कई गतिविधियों में से भी एक के रूप में आसान पहुंचाने का तरीका एक है, जो मोदी सरकार की पिछले 11 साल की नीतियों को आपके सामने प्रेषित करेगा। ये एक इंटरएक्टिव भी है और ये बड़ा सहज अनुभव है। तो देश के अधिकांश भागों में लोग इससे जुड़ना भी शुरू हो गए हैं। ऐसे में अगर हम देखें तो देश भर के नागरिकों की जो जबरदस्त भागीदारी दिखाई दे रही है, उसमें उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाओं के साथ आगे आया है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा प्रदेश भी है। और ये बात 77% लोगों ने पूरा सर्वे भरा है, आप सोचिए। और इस राष्ट्रीय संवाद में योगदान देने के लिए उच्च स्तर की भागीदारी और रुचि को दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश को
काफी विविधता है,
और उसके बावजूद भी वहाँ पर 77% लोगों ने ये सर्वे में भागीदारी को दिखाया है। यानी अब तक की बात अगर करें हम आगे बढ़ने से पहले, कि 141,150 प्रतिक्रियाएं उत्तर प्रदेश से आ चुकी हैं, 65,775 प्रतिक्रियाएं महाराष्ट्र से, 62,580 प्रतिक्रियाएं तमिलनाडु से, 43,590 गुजरात और 29,985 हरियाणा से आ चुके हैं। ये एक मैंने कुछ थोड़े से आंकड़े दिए आपको।
जी, तीसरे नंबर पर आपने जो उल्लेख किया तमिलनाडु, हाँ, उस पर आपकी राय जानना चाहूंगा, क्योंकि इसमें अगर हम पांच जिन राज्यों का उल्लेख किया उसमें से उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ये दो हिंदी भाषी हैं, महाराष्ट्र मराठी भाषी है, गुजरात में भी हम उसे हिंदी भाषी नहीं कह सकते हैं, तमिलनाडु
की बात आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि तमिलनाडु में एक तो नमो ऐप कितना पॉपुलर है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर हिंदी के प्रति जैसे हम जानते हैं कि जानकारी कम है, और प्रधानमंत्री का नमो ऐप ऐसे तो सभी भाषाओं में है, तो तमिलनाडु के लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं क्या तमिल भाषा में दी है,
काफी अच्छी है, और नंबर
बहुत अच्छे हैं, और चाहे अंग्रेजी में भी दिया हो
जी,
तो भी ये बहुत ही एक तरह से मैं समझता हूँ
उत्साहवर्धक,
हाँ उत्साहवर्धक है। और अब हम आए इस बात पर कि सवाल कौन कौन से
जी, हाँ, इसमें लगभग 15 सवाल रखे गए हैं और उसके जरिए लोग अपना रिस्पांस दर्ज करा सकते हैं। जैसे अगर पहले सवाल की बात करें तो आतंकवाद से निपटने में पिछले एक दशक में भारत का रुख कैसे इवॉल्व हुआ है, कैसे विकसित हुआ है, इस पर है। तो सवालों पर एक एक करके आपकी राय लेते हैं।
हाँ बिल्कुल, देखिए आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल की ओर इशारा किया कि पिछले दशक में आतंकवाद के खिलाफ जो भारत का दृष्टिकोण रहा है, और भारत के दृष्टिकोण में जो राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ भी भारत सरकार की जो कार्रवाइयों को देखते हुए एक नागरिक के रूप में अपने आप को लोग कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, ये प्रश्न बहुत अहम है। विशेषकर हमने देखा
दूसरा सवाल
कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और आतंकवादी ठिकानों पर घुसकर भारत के सशस्त्र बलों ने उसका जवाब दिया, तो उस सब के बाद एक आम नागरिक क्या अपने आप को भारत में सुरक्षित महसूस करता है, ये एक सबसे पहला प्रश्न है। आतंकवाद से निबटने में देखिए इसमें एक और बात जाहिर होती है कि भारत में जो एक स्थायी सरकार है, भारत में जो लोकतंत्र है, और उसके बाद भारत में जिस तरह से हमारे पास एक निष्पक्ष न्याय सिस्टम है, मीडिया हमारा फ्री है, तो इन सब चीजों में लोग अपने आप को अगर सक्षम और सुरक्षित महसूस करते हैं तो वो तभी इसमें भाग लेकर इसमें जाएंगे। अगर कहीं उनके मन में आशंकाएं हैं भारत के लोकतंत्र के प्रति, भारत में स्थायी सरकार के प्रति, भारत में सुदृढ़ नेतृत्व के प्रति, या भारत में जो व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, या हमारी न्यायपालिका है, इनके प्रति अगर कोई लोगों में किसी तरह की अभी अगर कोई समस्या है तो वो उनको लगेगा कि भाई फिर इस सर्वे में भाग लेने का लाभ नहीं है। लेकिन इसलिए उनसे सवाल भी इसी तरह से पूछे गए हैं कि वो अब क्या आपको लगता है कि भारत की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब अधिक सुना जा रहा है और उसको अधिक सम्मान दिया जा रहा है, इस प्रकार से प्रतिक्रिया मांगी गई है। तो इसमें सरकार की कुछ निर्धारित जो योजनाएं हैं, जैसे स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रयासों पर भी प्रतिक्रिया मांगी गई है। तो ये एक तरह से पूरा जो समाज का जो ढांचा है उसमें जिस प्रकार की समस्याओं से जूझने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता है, सरकार की योजनाएं हैं, उनको लोग कैसे देख रहे हैं और उसमें उनकी प्रतिक्रिया है कैसी है, क्या कोई कमी है, उसके बारे में भी वो बता सकते हैं, अपना एक सुझाव के तौर पर भी योगदान दे सकते हैं।
जी, आगे के सवालों पर अगर हम गौर करें तो जैसे उन्होंने डिजिटल इंडिया प्रोडक्ट्स और सेवाओं की बात की है, या महिलाओं के नेतृत्व में जो विकास की बातें हैं उस पर भी कुछ सवाल डाले गए हैं। उम्मीद है कि इससे समाज के हर वर्ग से, हर स्तर से जो रिस्पांस है वो हासिल हो पाएगा।
देखिए, भारत ने जो 11 वर्षों में मोदी काल में सुशासन, राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन और जो कई ऐसे साहसिक निर्णय जो देखने को मिले हैं, सरकार ने एक ई बुक भी जारी की है इसके बारे में भी अगर हम बात करें, जिसमें पिछले 11 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में हुई उपलब्धियों का विवरण है। तो मोदी सरकार ने जिस दिन ये 26 मई 2014 को पहली बार शपथ ली थी और उसके बाद उन्होंने 2019 और फिर 2024 में लगातार प्रधानमंत्री ने शपथ ली और 9 जून 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री ने कार्यभार संभाला था। तो जो देश एक प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में लगातार विश्वास व्यक्त करता है और बार बार उनको एक स्थायी सरकार बनाने का अवसर दे रहा है, तो ऐसे में जो भारत की जनता है, विशेष तौर से जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, ये जो हमारे आदिवासी भाई हैं, इन लोगों तक क्या सचमुच में विकास की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है कि नहीं, ये सरकार जानना चाहती है। क्योंकि जब तक फीडबैक नहीं आएगा, प्रतिक्रिया नहीं आएगी, तब तक सरकार को लगेगा कि हाँ हम तो सब अच्छा काम कर रहे हैं,
समुचित बदलाव नहीं हो पाएगा।
हाँ, क्योंकि जब तक वो नीचे ग्रास रूट लेवल तक उसका लाभ नहीं मिलेगा और उसका फीडबैक नहीं आएगा, तो सरकार आमतौर पर हम देखते हैं पिछले दशकों में कई बार सरकार अपनी ओर से काम करती है, उनको लगता है हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसका जो लाभ है वो जमीनी स्तर तक लोगों तक पहुंचा के नहीं पहुंचा। और अक्सर हमने देखा है अपने पत्रकारिता जीवन में देखा है कि जब टर्म खत्म होने पर चुनाव आते हैं तो अक्सर सरकारें ये कहा करती थी कि हमारे अच्छे काम लोगों तक नहीं पहुंचे। तो लोगों तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, इसकी जानकारी अगर सरकार को पहले हो जाती है, समय रहती होती है, तो सरकार अपनी नीतियों में सुधार कर सकती है, उनको और अच्छी तरह से उनका जो पालन करने के लिए जो सिस्टम है उसको लागू कर। तो उस दृष्टि से ये जो सर्वे किया गया है, मैं समझता हूँ ये बहुत लाभकारी होगा और एक भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को भी दर्शाता है। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, लोग भागीदारी भी दिखा रहे हैं। तो ये इस उद्देश्य से मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सर्वे है और इसकी सफलता के बारे में तो कोई दो राय होनी भी नहीं चाहिए।
जी, एक प्रश्न है, संस्कृति और विरासत पर गौरव और उससे कैसा जुड़ाव महसूस करते हैं उसके बारे में, क्योंकि पिछले एक दशक में हमने देखा है कि देश में जो राष्ट्रीयता की भावना है, जो अपनी संस्कृति से, अपनी विरासत से जुड़ाव की भावना है, इसका काफी विकास हुआ है।
देखिए, प्रधानमंत्री ने एक देश के सामने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक, जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 साल पूरे करेगा, तो भारत विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होगा। तो ये जो विकास की यात्रा है, इस यात्रा में जितने भी राष्ट्रीय मुद्दे हैं, सुशासन की बात है और भारत के सांस्कृतिक गौरव की जहां तक बात है, इनको लेकर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री लगभग अपने हर मन की बात एपिसोड में भी इन सब की चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं। तो ये चीजें नीचे स्तर पर, जमीनी स्तर तक कैसे देखी जा रही हैं, ये सर्वे में से निकल कर आएगा।
जी, और एक बहुत अहम सवाल है कि ये बात की जा रही है कि आपके जो लोकल और नेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो आपके इलाके के जो पब्लिक कंसर्न्स है, जो चिंताएं हैं, जो लोगों से जुड़े हुए सरोकार हैं, उस पर कैसा रिस्पांस दे रहे, कितनी जल्दी, कितना उनका रिस्पॉन्सिवनेस कैसा है, उस पर भी इस सर्वे में सवाल किए गए हैं।
बिल्कुल, देखिए, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जिनको जनता चुन के भेजती है, उनकी जवाबदेही क्या है जनता के प्रति। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि जब चुनाव होता है तो वो अगर सांसद या विधायक हार जाता है तो लोग सोचते हैं लोगों ने उसमें अपना अविश्वास व्यक्त किया है, जो जीतते हैं, अच्छा काम करते हैं उनके प्रति। लेकिन लगातार लोगों का फीडबैक आना चाहिए कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि क्या जन सेवा में, जन भागीदारी में काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये कोई चुनाव के समय ये सर्वे नहीं करवाया जा रहा, क्योंकि अगर ये चुनावी समय पर करवाया जाता तो इसको राजनीतिकरण देखा जाता, विपक्ष भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देता। लेकिन इस समय कोई चुनाव नहीं है देश में, ना लोकसभा का है, कहीं एक आध प्रदेश में चुनाव आने वाला है आगे चलकर नवंबर में। लेकिन इस समय ये जो सर्वे हो रहा है, ये मोदी सरकार के 11 साल के शासन के जो भी उपलब्धियां हैं या जो खामियां हैं, उनके बारे में प्रतिक्रिया ली जा रही है। तो मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में एक बड़ा अनूठा प्रयास।
जी अशोक जी, सुर्खियों में आने और बहुत सार्थक चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारत के भविष्य को नया आकार देती नागरिकों की नमो ऐप पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
सुर्खियों में